कहीं प्राण को भी नहीं बचा सकूंगी, इसलिए मैं नहीं खा सकती। और इतना दिन, दस महीने तक ना, इतना कष्ट कौन करेगा, मैं नहीं खाऊं। उसने अपनी बहन को वो दे दिया और अपने क्या कि उस फल को लेकर के गैया को खिला दिया अपनी, और अपनी बहन के पास में जाकर के उसने कहा कि तेरे 10 महीने में लड़के होने वाले हैं, वो उस लड़के को हमको दे दे। उसकी बहन और उसका बहनों ही वैसे ही अधार्मिक व्यक्ति थे, भगवान से कोई भी संबंध नहीं था। अब गैया को खिलाया, गैया को तो पेट रहा, गर्भ रह गया, और उधर में उसकी बहन को भी गर्भ था। अब ये साधु संतों के दिए हुए मंत्र पुत्र फल खाने से परम धार्मिक उसको पुत्र हुआ गोकर्ण, और उसकी बहन को हुआ महाधुंधकारी, धुंध मचाने वाला। जही उसका जन्म हुआ, उनका पात होने लगा और घर में क्लेश छा गया। अब उसने अपनी लड़के को रात ही रात में इसके यहाँ पर पहुंचा दिया, और इसने ऐसा बहाना किया मानो इसको पुत्र हुआ, गैया को पुत्र हुआ, बड़ा परम सुंदर एक लड़का, किंतु कान कैसा, गैया जैसा, बाकी सब मनुष्य जैसा परम सुंदर सुलक्षण युक्त हुआ। कुछ दिनों के बाद में ये इतना उत्पात करने लगा जो उसके पिता और माता जी को भी उसने मारी डाला। पिताजी ने आत्महत्या कर लिया, कुएं में गिर गए, और मैया को इतना कष्ट दिया जो वो भी मरी। और इसके बाद में गोकर्ण जी वहां से तीर्थ यात्रा में निकल गए, घूमते 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 कुछ दिनों के बाद में ये तीर्थ स्थलियों में घूमते हुए घूमने लगे। थोड़े दिन के बाद में ये अब माता पिता रहे नहीं, भैया गोकर्ण नहीं रहा, माँ धुंधकारी, शराब पीना, जुआ खेलना, लोगों के साथ में मारपीट करना, डकैती करना, ये उसका काम हो गया। इसके बाद में स्त्री की आवश्यकता हुई, वेश्याओं पर आसक्त हो गया और नए नए धन लूटता, चोरी करता और उन वेश्याओं को देता। एक दिन बहुत बड़ा भारी माल लाया, सोने के अलंकार इत्यादि, और बहुत सा माल लेकर के आया और स्त्रियों को, अपने वेश्याओं को उसने दिया। वेश्याओं ने कहा ये इतना अधिक माल है, ये यदि दूसरों को पता लग गया और ये भी पीछे कुछ ले लेगा, ऐसा सोच करके सब ने मिल करके उसको पकड़ लिया उसी घर के आंगन में, और पकड़ करके उसको गला दबाया खूब जोर से, वो मर गया। और लकड़ी जला करके उसके मुंह में एकदम भर करके और उसके सारे अंग को जला करके खा कर दिया, और आंगन में खोद कर उसकी लाश को वहीं पर दबा करके मट्टी भर करके और वहां से सब धन ले करके वहां से चली गई। ऐसे दुष्ट लोगों की ऐसी ही दुर्गति होती है। इसमें बहुत भारी भारी शिक्षाएं सब भरी पड़ी हैं, ऐसा जीवन नहीं होना चाहिए। कुछ दिनों के बाद में ये महाभयंकर पिशाच हुआ और घर में किसी को आने नहीं दे, पल्ले जितने आसपास में मोहल्ले के आदमी थे, मारना पीटना भयानक, उनको भय दिखलाना आरंभ कर दिया। कोई मोहल्ले वाले छोड़ करके सब भागने लगे। इधर में गोकर्ण जी गया में, पुष्कर में, हरिद्वार में, कुरुक्षेत्र में अपने पूर्वजों के लिए और वर्तमान रहने वाले और पीछे से आने वाले सब लोगों के लिए श्राद्ध किया। ऐसे विधि है ने? उन्होंने विधि दिया, किंतु तभी इसका कोई कल्याण नहीं हुआ। कुछ दिनों के बाद में घर में लौटे, देखा जा रही ये तो भयंकर तमाशा, रात में भयानक रूप धारण करके, कभी भैंसे का, कभी सांड का, कभी सुअर का, कभी कुछ, कभी अलक्षित रूप में सताने लग गया, इनको वहां से भगाने लगा। किंतु ये तो भगवत भक्त थे, इन पर भूत पिशाच राक्षस कोई भी विद्या कुछ भी काम नहीं करती। जो भगवान का नाम करता है, भगवान की कथा सुनता है, भगवान का स्मरण करता है, भक्ति पर इन लोगों का काम नहीं। कुछ भक्त लोगों को मैंने ऐसा देखा सुना, महाराज जी आप कृपा करें, हमारे ऊपर में कुछ हवा चल रही है, हमारे घर में भूत आ गया है, हमारे यहाँ में डाकिनी आ गई है। माने कहा जैसे तू मूर्ख व्यक्ति जो या तो तू भगवान का भजन नहीं करता या करती, या करता है और करती है तो जैसा करना चाहिए नहीं करती, तो भूत तुमको पकड़े हुए, आज से नहीं कोटि कोटि जन्मों से तुमको भूत पिशाच ने पकड़ रखा है, आज ये कोई नई बात नहीं है। तो जिस जो भगवान का भजन करेगा, हरिनाम करेगा और सोचेगा जी हमारे ऊपर में ऊपर की हवा चल रही है, भूत पिशाच लगा है, तो एक तरह से भगवान के प्रति, नाम के प्रति अपराधी है, उसको जरूर भूत लगना चाहिए और डाकनी लगनी चाहिए। इसलिए ऐसा विश्वास रखिए जो भगवान का नाम करेगा, भजन करेगा, उस पर भूत पिशाच हवा इधर की जक्ष प्रेत किसी का मंत्र जादू टोना कुछ भी नहीं लग सकता, ये पूर्ण विश्वास है। यहाँ पर अभी हम लोग भागवत की कथा कर रहे हैं, यहाँ पर ये सब कुछ भी नहीं आ सकते या कभी भी नहीं आ सकते हैं, ऐसा विश्वास रखिए। तो वो वहां पर चुपचाप बैठे रहे, बहुत तंग किया तो कुछ नहीं हुआ। अंत में उन्होंने कुछ मंत्र पुत करके उसके ऊपर में पानी छिड़क दिया, तो बोला जे भैया मैं पिशाच हो गया हूं, वेश्याओं ने इस प्रकार से हमें मारा, अब हमारे उद्धार की बात कीजिए। और बहुत रोने गिड़गिड़ाने लगा, ये सूर्यदेव के पास में गए, इसका कल्याण कैसे होगा, हमने तो गया में पिंडदान दिया, कुरुक्षेत्र में दिया, प्रभास में दिया और सब जगह में इसके लिए और हमारे पूर्वजों के लिए सबको कुछ किया, इसको तो कुछ हुआ ही नहीं, आप कुछ बतलाइए। सूर्यदेव ने कहा कि इसको श्रीमद् भागवत की जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज जी को आज से 200 वर्ष पहले सुनाई थी उसको आप श्रवण कराओ, इसका जरूर रूप से पिशाच से निकल जाएगा, वैकुंठ की गति होगी। तब उन्होंने बैठ करके सप्ताह की कथा उनको सुनाई थी, एक सांप गांठ वाला बांस खड़ा कर दिया, मंत्र से पूत करके उसका आवाहन किया उस धुंधकारी को, धुंधकारी आगच्छ आगच्छ तिष्ठ तिष्ठ इस बांस में बैठ जाओ, बस वो बांस में प्रवेश कर दिया और उसको रख दिया। और प्रधान श्रोता तो वो था, किंतु ब्राह्मण लोगों को भी जो सदाचारी और भक्त थे उनको गोकर्ण ने प्रधान श्रोता बनाया, किंतु लक्ष्य था उसका, उसको रख दिया उसको सुनाने के लिए। धुंधकारी तन से मन से वचन से एकाग्र होकर के उस कथा को सुनने लगा, और उस सभा में जो लोग थे वो सुनते रहे थे, तो वो कैसे सुन रहे थे, कभी आलस्य करें, कभी जम्भाजी करें, कभी पेशाब के लिए जाएं, कभी खाने के लिए जाएं, कोई पानी पिए, कोई कुछ करे और कथा सुन रहे हैं, कभी कभी कोई ऊँघ रहे हैं, कोई कुछ सो रहे हैं, कभी कभी गिर पड़ रहे हैं, कोई कोई मन से भी सुन रहे हैं किंतु विश्वास के साथ में नहीं सुन रहे। इस तरह से कथा हुई, पहले दिन भागवत की का महात्म हुआ, जिसको हमारे शुभानंद जी ने संक्षेप में कुछ बताया, कुछ अभी और आगे बतलाएंगे। वो महात्मा इत्यादि देकर के जब आरंभ किया और शाम हो गई, तो शाम के समय में बड़े जोर से शब्द हुआ और उस बांस का एक गांठ फट फट गया और वो ऊपर चढ़ गया नीचे से। इसी तरह से 7 दिन कथा हुई और प्रतिदिन शाम को एक एक गांठ फटती गई, 7वें दिन पूरी गांठें वो 2 खंड बांस हो गया। और उसी समय देखा जी विमान एक आया सुंदर सा, उस पर भगवान विष्णु के पार्षद लोग शंख चक्र गदा पद्म लेकर के वहां पर, ये गोकर्ण जी के चरणों में ये गिर गया, आप मेरे भैया भी ही नहीं हमारे गुरु भी हैं, आज ने हमारा इस प्रेत योनि से तो उद्धार किया, केवल यही नहीं हमारे जन्म जन्मांतर जो इस जगत में आना और जाना लगा हुआ था अनंत जन्मों से वो समाप्त हुआ, अब आज विष्णु के दूत हमें वैकुंठ ले जाने आ रहे हैं, आप हमारे ऊपर में कृपा, आपकी कृपा से ही ऐसा संभव हुआ। उन्होंने विष्णु दूतों से गोकर्ण जी ने कहा, जे प्रभो ये तो बड़ा भारी अन्याय हुआ, हमने कथा सुनाई और एक ही विमान आया केवल इसके लिए, और किसी के लिए विमान कोई नहीं आया, न हमारे लिए आया और न इतने श्रोता थे, इन श्रोताओं के लिए विमान कोई नहीं आया, ऐसा अन्याय क्यों हुआ? कहे ये अन्याय नहीं, ये ठीक ही न्याय ही हुआ। जिस प्रकार से, जिस लग्न से चित्त को एकाग्र करके बिना इधर उधर किए, बिना खाए पिए परीक्षित महाराज की तरफ में इसने कथा सुनी, उस तरह से वक्ता धुंधकारी गोकर्ण है, आपने भी और ये जितने भी श्रोता है किसी ने ऐसे मन से एकाग्र करके नहीं सुना, इसलिए एक ही विमान आया है। इस पर केवल धुंधकारी जी बैठेंगे, बस उनको बैठाया और लेकर के वो लोग चले गए। आप लोग भी ऐसे ही ना? यदि धुंधकारी जैसे चित्त को तन्मय करके, प्रसन्न चित्त से, एकाग्र करके, एक आसन से, एक मन से यदि सुनेंगे और यह विश्वास रख कर, क्या धुंधकारी ने जो विश्वास रखा था उस विश्वास से भी ऊपर चले जाइए, वो तो बैकुंठ गया ना। हम बैकुंठ में यदि विमान आएगा कहा ये चलिए बैकुंठ में हम प्रत्याख्यान कर दें, हम नहीं इस बैकुंठ इस विमान में बैठेंगे। क्यों नहीं? हम बैकुंठ में भागवत की कथा सुनेंगे और बैकुंठ में जाएंगे, हम बैकुंठ नहीं चाहते, हम तो इसी होम ब्रज में वृंदावन में ही रहना चाहते हैं। और यदि चाहते हैं तो आप हमको गोलोक वृंदावन जो वो है ना नित्य, उसमें यदि ले चलें और उसमें हम राधा कृष्ण की सेवा कर सकें तब तो हम जाएंगे, और नहीं तो यहीं पर हम रहेंगे, जन्म मरण भी होता रहे कोई भी बात नहीं है। इस प्रकार के यदि सुने ना तब तो कल्याण। तो वो दूत कहेंगे अच्छा तो ठीक है, एक बात करो, बैकुंठ से ऊपर में तुमको राम लोक ले चलते हैं। प्रभु हमको राम लोक नहीं चाहिए। अरे उसमें बैकुंठ गोलोक में द्वारका है, वहां चलोगे तो प्रभु हम उसे भले अच्छे यहीं पर हैं, हम यहाँ से टसमस नहीं होंगे। अच्छा तो ठीक है आओ हमारे साथ में, ब्रज में तुमको ले चलेंगे और वहां पर गोपियों के अनुगत्य में राधा कृष्ण जुगल की सेवा का हम तुमको सुधो। हाँ तब ठीक, ऐसे ही आप लोग उस दृष्टि से यदि सुने भागवत को तब तो बहुत ही सुंदर है, नहीं तो अंततः धुंधकारी की तरफ में तो जरूर सुनिए। इसके बाद में उन्होंने 7 दिन तक कथा उस विश्वास के साथ में और उसी प्रकार से एकाग्र चित्त के साथ में कही, और जितने श्रोता थे वहाँ सब तन्मय होकर के उसी प्रकार से सुनने लगे, किसी की आँख में खुमारी नहीं आई, किसी ने कोई जम्भाई नहीं ली ना, किसी ने कोई और दूसरी कोई चिंता नहीं की, तन मन से वचन से अत्यंत अनुरक्त होकर के तदात्म होकर के भगवान की कथाओं का श्रवण किया और कोटि कोटि विमान वहां पर 7 दिन के बाद में उपस्थित। जितने लोगों ने वहां पर सुनी थी कथा, यहां तक कि मच्छी और मच्छर और चींटी भी उस यदि कथा स्थल में थी, सब लोगों ने चतुर्भुज रूप धारण किए और बैकुंठ धाम को पहुंच गए। ऐसी ये कथा कब हुई? 230 वर्ष बाद में एक उसके बाद में फिर कलयुग का महाप्रताप धीरे 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 छाया, वो लोग तो चले गए और 30 वर्ष चला गया। तो अब कितना हुआ? 30 वर्ष पहले, 200 वर्ष बीच में और 30 वर्ष और 260 वर्ष बीत गए। अब कलयुग का महाप्रचंड प्रताप आया, परीक्षित महाराज जी भी चले गए हैं, ऐसे ऐसे संत नारद इत्यादि भी सब चले गए हैं, धुंधकारी गोकर्ण रहे वो लोग भी चले गए हैं, ऋषि लोग जो सौनक सुत गोस्वामी इत्यादि थे वो लोग भी अब अप्रकट हो गए हैं। अब नारद जी भ्रमण करते हैं अलक्षित रूप में, अब भ्रमण करते 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 कुरु जंगल देश के जमुना के तट पर कहीं पहुंचते हैं और वहीं पर सुखदेव गोस्वामी उनसे नारद जी से भेंट होती है, सनक सनंदन चतुर्सन, वहां पर नारद जी से जो प्रसंग हमने बतलाया उन्होंने कहा अच्छा तुम उदास क्यों दिखता है। तब उन्होंने ये बतलाया पृथ्वी में अब कोई सार नहीं रह गया, भगवान का कोई शुद्ध रूप से भजन नहीं करता, गृहस्थों की तो बात ही क्या, साधु और सन्यासी भी बड़े पाखंडी हो गए हैं, ब्राह्मणों में कोई सार तत्व नहीं रहा, वो केवल घर गृहस्थी और इसी में सुख भोग में वो मत्त रहते हैं। हरि कथाओं में भी अब कोई भागवत की कथा उस समय से सप्ताह की होती है, कथाओं में भी सार नहीं रह गया, क्यों, दक्षिणा पर अधिक लक्ष्य रहता है और बगल पोथी दबा करके इधर उधर घूमते हैं। बहुत से भागवत कथा वाचक हमारे पास भी आते हैं, महाराज जी बम्बई में एक पत्र लिख दीजिए जो आपका परिचित हो तो वहाँ पर हमारी भागवत कथा हो जाए और कुछ रुपए आ जाए, लड़की की शादी करना है पैसे नहीं। ये किस लिए भागवत कह रहा है, इसलिए ऐसी भागवत की कथाओं में अब सार नहीं रह गया, इसलिए उनको भगवत भक्ति और ये नहीं होती। लोगों में स्त्रियों में भी स्त्रीत्व जो होना चाहिए वो नहीं रहा, प्रेम सबका उठ गया, कुकर्म होने लगे, लोग अपने साधारण कुछ तुच्छ चीजों की आशा के लिए भाई का, पड़ोसी का, नौकर अपने स्वामी का कत्ल कर देते हैं, ये तो रोज अखबार में पढ़ते हैं। ऐसी स्थिति हो गई थी, उन्होंने कहा ये मुझको क्या करना चाहिए। मैं घूमते 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 बड़े आश्चर्य की बात देखी, देखा कहाँ, जमुना के किनारे वृंदावन में देखा। क्या देखा, एक स्त्री है युवती और दो व्यक्ति उसे वृद्ध हैं जो कि उनको उठाने की चेष्टा करती है और वो उठते नहीं है। मैं उससे पूछा जब तुम कौन हो और ये कौन है, ये क्या बात है। उन्होंने कहा युवती ने जब मैं भक्ति हूँ, मेरा जन्म कहाँ हुआ, मेरा जन्म हुआ दक्षिण प्रदेश में, अर्थात यहाँ पर रामानुज, अंततः शंकराचार्य रामानुज, मध्वाचार्य विष्णु स्वामी निम्बादित्य इत्यादि का जन्म हुआ और भगवत भक्ति का विश्व में प्रचार किया, वहीं से भक्ति का जन्म मानो। इसके बाद में मैं वहाँ से कर्नाटक आई, वहाँ पर बड़ी हुई, मैंने कुछ भक्ति का वहाँ पर भी भाव, वहाँ से महाराष्ट्र में आई, महाराष्ट्र मैंने बम्बई इत्यादि, तो वहाँ पर कुछ और बड़ी हुई, उन लोगों ने भी आदर जताया। इसके मैं गुजरात गई, गुजरात जाने के बाद में मैं बूढ़ी हो गई, हमारे लड़के भी बूढ़े हो गए और वो एकदम अज्ञानी बन गए। मैं तो बड़ी तंग रह गई, जाए हमारे लड़के सब बूढ़े हो गए, मैं भी बूढ़ी हो गई। वहाँ से उनको लेकर के वहाँ से भगी भगी जमुना के किनारे इस वृंदावन में आए, यहाँ आते ही मैं अत्यंत सुंदर युवती बन गई, हमारे लड़के लोग किंतु बूढ़े रहे और ये सो रहे हैं। अब मैं इसी दुख में हूँ, हमको सब समय हृदय में दुख है और हमारे बच्चे आज बूढ़े हुए हैं, मैं अभी युवती हूँ, आज हमारा कैसे कल्याण हुआ है आप बतलाएंगे। नारद जी ने देखा, पूछा उसको बताया, कोई चिंता मत करो हम इसकी चिंता करें। ऐसा सोच करके उन्होंने भगवत भक्ति की महिमा वहाँ पर वर्णन की, वो तो नवज्योति हो गई और बड़ी सुंदरी हो गई, किंतु बच्चे भी, बच्चों को उठाने की चेष्टा की, वेदांत, वेद, पुराण और भी सब का उन्होंने उनको सुनाया, किंतु वो हिले डुले तो थोड़ा सा ज्ञान भी आया किंतु फिर झुक करके सो गए, उठे ही नहीं। तब उनको छोड़ करके मैं गया इधर उधर खोजने, सब तीर्थों में गया, इधर उधर गया, लोगों से पूछा, आकाशवाणी हुई, तुम देखो एक बात करो, एक सत्कर्म करो और उस कर्म से, सत्कर्म से ये भी बच्चे भी बूढ़े जो हो गए हैं नवज्योत हो जाएंगे और बड़े सुंदर सुकांत और अच्छे हो जाएंगे। ऐसा सोच करके मैं सोचे वो सत्कर्म कौन सा है जिसको कर्म, घूमते 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 तो आपके पास में ही है, आप बतलाइए वो कौन सा सत्कर्म है। उन्होंने कहा जी देखो वो सत्कर्म तुम खुद जानते हो, किंतु तुम भक्ति के आचार्य हो, तुम हमारे द्वारा, दूसरों के द्वारा और जगत के कल्याण के लिए ये प्रकाशित करना चाहते। अरे तुमने तो व्यास को यही चीजें सुनाई थी और उन्हीं के कृपा से फिर तुम्हारे ही कृपा से सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित को सुनाई और उनका कल्याण हुआ, तुम जानते नहीं हो, उस सभा में तो तुम भी था, फिर भूल कैसे गए? आप भागवत की कथा उसको सुनाइए, कहे मैं तो भागवत की कथा नहीं जानता। अच्छा तो मैं तुमको सुनाता हूं। तब उन्होंने भागवत की कथा उनको सुनाई और जब ही उसका महात्मा आरम्भ किया, उसके लड़के और वो भक्ति देवी वहां पर प्रकट हो गई उन कथाओं के माध्यम से, और उनके लड़के स्वस्थ सुंदर सब हो गए, और वो भी परम सुंदरी और समस्त भक्ति के भूषणों से एकदम भरपूर सुंदर बन गई। बड़ा आनंद छा गया। इसके बाद में कथा हुई और उस कथा के बाद में भगवान स्वयं राधा जी के साथ में प्रकट हुए, वहाँ पर सब भक्त लोगों का आविर्भाव हुआ, सभी जोर से कीर्तन करने लगे भगवान की महिमा का, और भक्त लोग भी कीर्तन करने लगे, भगवान बड़े प्रसन्न हुए। अब जरा एक कीर्तन सुनाइए तो खूब। इसके बाद में आप लोग ठीक 4 बजे यहाँ पर उपस्थित हो जाएंगे, 4 बजे से लेकर के 7 बजे तक हमारी कथा रहेगी, बीच में कुछ कीर्तन होगा, और उसके बाद में फिर 7 बजे आरती के बाद में आप लोग
स्वरूपम रूपम तस्यापतिपुरीं मातुरीं गोष्ठवाटीं राधाकुण्डं गिरिवरमहोराधिका माधवासां तो यस्य प्रत्यक्षतया श्रीगुरुं तं नतोऽस्मि। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नम्ने गौरत्तिशे यं प्राव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं दैपायनो विरहकातरया जुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोभिनेति तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। तवैवास्मि न जीवामि त्वया विना इति विज्ञाय राधे तं नयमाम चरणान्तिके।
हम लोगों का रसमयी भागवत कथा आरंभ हुई, जिनमें 3 श्लोकों का सार बतलाया गया। पहले ये बतलाया गया कि श्रीमद् भागवत वेद वेदांत इत्यादि के अर्थ को परिवृंधन करने वाला है, वर्धित और विस्तार करने वाला है। गायत्री का ये भाष्य, महाभारत इत्यादि जितने भी शास्त्र हैं उस सबका सार संकलन है श्रीमद् भागवत। विशेष रूप में ये गायत्री का भी अर्थ निष्पंदन करने वाला है। कैसे गायत्री का? जन्मादस्य जतः इस श्लोक में बतलाया है। पहले श्लोक ये मंगलाचरण का श्लोक है। व्यास जी ने मंगलाचरण के रूप में इस श्लोक की अवतारणा की। सुखदेव गोस्वामी ने इसी से मंगलाचरण किया और सुत गोस्वामी जी यहीं से आरंभ कर रहे हैं इस कथा को। तीनों के लिए ये ठीक है। जन्मादस्य जतः, जिससे ये संपूर्ण जगत, इन सब की सृष्टि होती है, और जिनसे ये समस्त विश्व ब्रह्मांड की स्थिति अथवा इन सब का पालन होता है, पोषण होता है, और अंत में जिसमें ये सब कुछ समा जाता है, जो जगत के ये आदि कारण है। अन्वय और व्यतिरेक रूप में ये सब जगत की सृष्टि करता है, अर्थात उनकी चित शक्ति से चित जगत, जिनकी तटस्था शक्ति से जितने ये अनंत जीव हैं, जीव जगत है, और जिनकी माया शक्ति से ये संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड अगिनत ये फल है। उनसे ये उनकी तीन शक्तियों से ये तीन प्रकार के जगत उत्पन्न होते हैं। ये हुआ अन्य। और पितरेक रूप से माया से जीव का कोई भी संबंध नहीं है, स्वरूपतः जीव कृष्ण का दास है और चिन्मय अंश है उनका, अज्ञान से उनका कोई भी संपर्क नहीं है, तो भी यह जीव इस माया में लपटा कर अपने को यह शरीर और मन समझता है और संसार के दुख और सुख में लगता हुआ त्रितापों से ग्रस्त होकर के अनंत काल से यह इसी में भ्रमण कर रहा है, उसे सुख और शांति नहीं मिलती। ये हुआ व्यतिरेक। इस विषय को अर्थेषु अभिज्ञः, कृष्ण ही एकमात्र सृष्टि के अर्थ को समझते हैं। क्यों सृष्टि करते हैं, क्या जरूरत है उनको, वो स्वयं तो अपने में पूर्ण है, उनको किसी चीज की जरूरत नहीं है, आप्त कामों को भी आप्त काम है, फिर उनको क्या जरूरत पड़ी जो अपने लिए जीवों को दुख देते हैं, संसार में भ्रमण करते हैं, कोटि कोटि जन्मों तक ये दुख झेलते क्यों, इसमें क्या उनका भला है, क्या उनका, ये कृष्ण ही जानते हैं। ब्रह्मा ने जगत की सृष्टि नहीं की, प्रकृति ने जगत की सृष्टि नहीं की, क्यों भगवान ने की, कैसे की, उन्होंने स अकामयत उन्होंने कामना की, स अच्छत उन्होंने इच्छा की, और साथ ही साथ में जगत हो गया, कहना मात्र की सोचना मात्र हो गया, सत्य संकल्प ये है, उसके अर्थ को कैसे ये होता है, क्यों होता है, ये वही जानते हैं, ब्रह्मा इत्यादि उस विषय में मोहित हो जाते हैं ना? वही स्वराट हैं, उनके ऊपर वाला कोई नहीं है जो उनका नियमन करे, ऐसा कोई नहीं, क्यों उन्होंने ऐसा किया, कैफियत करने वाला जगत में कोई नहीं है। उन्होंने इसको तेने ब्रह्म हृदय आद कवये, ब्रह्मा जो आदि कवि हैं उनके हृदय में उसको विस्तार किया, जिससे सामान्य एक लाभ करके प्रतिभा उन्होंने विश्व की सृष्टि कर दी, ब्रह्मा की कमललाल से प्रकट हुए, तपस्या की, उन्होंने थोड़ा सा कुछ उनको दिया, मेरे कृपा से तुम इन चीजों को अवगत हो, और उन्होंने तब ब्रह्मा जी ने उसमें जितने देवता लोग सम्मोहित हो जाते हैं कि कैसे ये जगत हुआ, क्यों हुआ, क्या हुआ, इसमें सब देवता लोग अखिल जितने देवता हैं जो कि मुक्त लोग भी हैं वो मोहित हो जाते हैं। भगवान की जिस शक्तियों की बदौलत ये सब विश्व की सृष्टि स्थिति है, उनकी साधारण रूप में लोगों को समझने लायक तीन उदाहरण दिए, तेज, वारी और मृदा, मट्टी। तेज माने अग्नि, वायु और मट्टी। जैसे अग्नि है, अग्नि जब जलती है तो दिखती है, किंतु ऐसी कोई स्थिति नहीं है जो जगत में आग का अभाव हो जाता है, सर्वत्र आग है, सब चीजों में भी आग है, हमारे हृदय में भी जठराग्नि है, नहीं तो हजम नहीं होगा, ऐसा कोई छोटा सा परमाणु भी नहीं है जहां आग नहीं, किंतु वो दिखती नहीं, घर्षण करने से आग दिख, ओ आग लग गई, किंतु आग तो सर्वत्र है। उसी प्रकार से भगवान और भगवान की चित्त शक्ति से उत्पन्न जो अप्राकृत वस्तुएं हैं वो सब समय हैं किंतु दिखती नहीं, साधन के द्वारा दिखती हैं। इसलिए चिन्मय स्वर्ग का उदाहरण ये आग है, उसके लिए साधन करना पड़ेगा। वायु है, वायु कैसा है, बारी, बारी माने जल, जल कैसे, जैसे जल है तरल है फिर घना हो जाता है, तरल है
जलती हुई आग पर भी देने से उसे शांत कर देगा पानी। और वो जबकि बर्फ हो जाएगा तो वो कड़ा हो जाता है। वर्षा जब होती है तब किसी का सिर नहीं फूटता उस पानी से, धीरे धीरे गड़ करके पानी ऊपर से गिरता है। और वही जब बर्फ के ओले पड़ते हैं तो कितने जीव जंतु मर जाते हैं, तब उसका स्वभाव ही अलग हो जाता है। उसी तरह से जब जीव भगवान के उन्मुख रह करके उनका भजन करता है तो माया से वो मुक्त रहता है। और जिस समय भगवान को भूल जाता है, जैसे अभी भूल जाते हैं, तो वो अपने को संसारी मान करके संसार के धर्मों में लीन हो जाता है और सुख दुख भोगता है। इसलिए ये जड़ तटस्थ स्वर्ग जीव स्वर्ग का ये उदाहरण है पानी। और मट्टी, मट्टी है जड़ स्वर्ग की। जैसे मट्टी से घड़ा, मट्टी से लोटा, मट्टी से थाल, मट्टी से बड़े बड़े चीज बनते हैं, किंतु मट्टी मट्टी ही है। उसी प्रकार से ये संसार में, विश्व में जितनी भी चीजें हैं, ये सब जो दिखती हैं वो सब प्रकृति के ही विकार हैं, सब मिट्टी के ही बने हुए हैं। वो किसी रूप में अभी मनुष्य बन गए, कोई सुंदर ज्योति बन गया, कोई बाघ भालू बन गया, कोई कुछ हो गया 84 लाख जीवन में जो भ्रमण करने वाली जोनियों के, ये सब जैसे मिट्टी से ही ये सब कुछ, मिट्टी की पुतली, मिट्टी के सब कुछ बनते हैं, वैसे ही ये सब इसका, ये उसका उदाहरण। कभी कभी भगवान की माया से पानी में आग दिखती है ने? जब खूब जोरों से गर्मी पड़ती है तो हवा गर्म होने करके पानी के लहरों के समान हिरणों को मालूम पड़ती है, या हम लोग भी देखते हैं लू जब चलती है ने? उस समय में हवा में ही पानी बोध होता है, पानी का आभास। और उसी तरह से कभी कभी सीप में मुक्ता का अभिमान, कभी रस्सी में सांप का, ये सब दिखता है। ये भगवान की अद्भुत माया है, किंतु उनकी शुद्ध माया क्या है? जो परम सत्य हैं कृष्ण, चित शक्ति में, जो चित धाम में जो नित्य विराजमान रहते हैं, जो सबसे परे हैं, वो परम सत्य स्वरूप जो कृष्ण हैं, उस नित्य लीला जगत में रह करके यहाँ पर भी ये सब अपनी शक्ति के द्वारा जो कार्य कर रहे हैं, और मिथ्या में भी अथवा इन प्राकृत सर्गों में भी अप्राकृत का भान जो हमें हो रहा है, उस परम सत्य स्वरूप श्री कृष्ण जो हैं उनको मैं ध्यान करता हूँ। पहले ये व्यास ने, सुत गोस्वामी ने, सुखदेव गोस्वामी ने, ये सब लोगों ने उनकी वंदना की कृष्ण। हमारे गौड़ीय वैष्णव कहते हैं कि भागवत का तात्पर्य केवल यही तक नहीं है, हम किसका ध्यान करते हैं अब उसके लिए फिर कह रहे हैं दूसरे अर्थ में, सत्यम परम धीमहि जन्मादस्य जतः। जिस नंदनंदन से रसों का आद्य रस, श्रृंगार रस, साथ साथ में पहले शांत दास सख्य बासल आदि रसों का प्रादुर्भाव होता है। यदि कृष्ण नहीं रहते तो ये जो शास्त्रों में लिखे हुए जो द्वादश प्रकार के रस हैं जगत में प्रचारित नहीं होते, ये कृष्ण के द्वारा ही है, इसलिए कृष्ण ही उसके आदि। वे अन्वय और व्यतिरेक रूप में इस रस का आस्वादन करते हैं। कैसे? कभी गोपियों से मिलते हैं और कभी बिछुड़ जाते हैं, संजोग और वियोग से। ये अन्वय हुआ संजोग और वियोग हुआ विप्रलम्ब, उनसे वियोग हो जाते हैं, मथुरा द्वारका चले जाते हैं। इस रूप में उस रसों की पुष्टि इन दोनों के रूप में अन्वय व्यतिरेक के रूप में करते हैं। अर्थेषु अभ्यज्ञ, इस विषय में केवल वही रसो रसो वैसह हैं, जितने प्रकार के निखिल प्रकार के जो रस हैं उसमें संपूर्ण रूप से अभिज्ञ। इसलिए वो रसामृत अखिल रसामृत सिंधु हैं ये कृष्ण चंद्र जी, वो इसको इस प्रेम को सबसे पहले ब्रह्मा जी के हृदय में आदि कवि हैं उनको स्फूर्ति क्या है, अथवा आदि कवि यहां पर सुखदेव गोस्वामी जी के हृदय में उन्होंने इसकी स्फूर्ति कराई, जिसे श्रीमद्भागवत में उसका उन्होंने वर्णन किया, जिस विषय में ब्रह्मा इत्यादि भी मुग्ध हो जाते हैं इस रस के विषय में। आए ब्रह्मा जी वृंदावन में और अघासुर को जब मुक्ति कर देते हुए देखा, अपने में मिलाते हुए, तो उनको बड़ा आश्चर्य हो गया और उन्होंने गैया बछड़ों को और सखाओं को कंदरे में रख दिया, देखें जी कृष्ण क्या करते हैं। इतने में कृष्ण ने उतने रूप बनाए, बछड़े और बाल बाल सब कुछ बना करके एक वर्ष तक लीला की, ब्रह्मा मोहित हो गए, यहाँ तक ही बलदेव जी मोहित हो गए उसने, और की तो बात क्या। इसलिए ब्रह्मा इत्यादि सभी मोहित हो जाते हैं जिस विषय में कृष्ण को, जो अखिल रसामृत सिंधु ये नंद नंदन यशोदा नंदन ही परम ब्रह्म है, परम सत्य है, इस चीज को वो नहीं समझ सके या उनकी लीलाओं को समझ नहीं सके, इसलिए वो मोहित हो जाते हैं। और जिनकी ऐसी लीलाएं हैं तेजो बार मृदान, अपने धर्म को जो जड़ है चेतन हो जाते हैं, चेतन जड़ हो जाते हैं कृष्ण की लीलाओं से, जैसे आप लोगों ने सुना है वृंदावनम सखी भुवनो वितनोति कृतिम जद्देव की सुत पदाम्बुज लब्ध लक्ष्मी गोविंद वेणु अनुमित मयूर नेत्रम प्रेक्षादृशानु अवर्तानि समस्त सत्व। पेड़ों पर गोवर्धन गिरिराज जी के चोटियों पर बैठे हुए जितने भी पशु पक्षी कीट प्राणी हैं, कृष्ण की बंसी पर थिरकते हुए मयूरों के नृत्य को देखकर सब प्राणी भूल गए, अपने हिलना डुलना बोलना भूल गए, चाहतना भूल गए। कृष्ण सुंदर बांसुरी से वेणु को बजा रहे हैं, अत्यंत सुंदर मुखारविंद, मोर मुकुट, वैजयंती माला, स्थिर विद्युत के समान पीतांबर, उनके श्याम अंगों पर ये सब सुशोभित हो रहा है, बंसी की तान पर मयूर नृत्य करने लगा। जब एकदम मतवाला होकर के जबकि नृत्य करने लगा, अपना एक पूंछ छोड़ दिया, कृष्ण ने उस पूंछ को लगा करके यहां पर ले लिया, जैसे कि न्योछावर करते हैं ना, वैसे मोहन ने न्योछावर कर कृष्ण ने उसको ग्रहण कर लिया और सब प्राणी स्थिर हो गए। उस समय में पेड़ झुक गए, चेतन का धर्म आया, फल फूलों से एकदम भर गए, उनके आंखों से प्रेम की धाराएं बहने लगी और चलने वाले जो पशु पक्षी हैं, गायें एकदम ऐसे कान को खड़ी कर दी और सुनने लगी, घास तृण उनके मुख में रह गया, मानो ये लकड़ी की मूर्ति बनाई हुई है, गाय चलने वाली नहीं। मृगा हरिणिया एकदम स्थिर हो गई, चलने वाले प्राणी स्थिर हो गए और जो नहीं चलने वाले जड़ हैं वो चेतन का काम करने लगे। इस तरह से नदियां रुक गई और कृष्ण के चरणों में मानो अपने हृदय को न्योछावर कर रहे हैं, और इसी तरह से ही जड़ चेतन सब अपने अपने धर्मों को भूल करके दूसरा जैसा आचरण करने लगे। तो यह है तेजो बारी मृदान विनिमयो जत्र सर्वो अमृषा। यह जगत जिसमें कृष्ण वृंदावन में आए हैं उसमें झूठा है ना सच्चा है? झूठा नहीं, परम सत्य है यह धाम। यह धाम गोलोक वृंदावन एक है, ऐसे सत्य परम सत्य धाम में जो कृष्ण रहने वाले अखिल रसामृत सिंधु कृष्ण हैं, वही सबके सब रसों के आदि मूल है, सत्यम परम धीमहि मैं उनका ध्यान करता हूं। हमारे जीव गोस्वामी विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर सनातन गोस्वामी ने कहा, भाई ये अर्थ भी हमको मान्य नहीं। क्यों नहीं? अकेले कृष्ण से रस का निष्पंदन नहीं होता, यदि श्यामा जी नहीं रहे, श्रीमती जी नहीं रहे, रास रसेश्वरी जी नहीं रहे, तो अकेले कृष्ण क्या हैं? राधा के बिना में वो केवल मदन मोहन है, मदन मोहन वो द्वारा मुग्ध हो जाते हैं, इसलिए राधा जी कौन है, राधा मदन मोहन
मोहिनी।
यदि उनके बामंग में यदि कृष्ण न रहे तो एक तरह से वो ब्रह्म है, निराकार निरंजन ब्रह्म है, वो ब्रह्मवादियों के कृष्ण बन जाएंगे, ब्रह्म बन जाएंगे। इसलिए राधा जी यदि नहीं रहेंगे तो वृंदावन की कोई शोभा नहीं होगी, रास भी राधा के बिना नहीं होगा, राधा के बिना कृष्ण का कोई भी वृंदावन का कार्य नहीं होगा, है ना। इसलिए राधा जी रहना होना जरूरी है। इसलिए आदि रस जो है, मधुर रस है, ये जन्मादिजस्य, जिससे के द्वारा राधा और कृष्ण दोनों जुगल हैं, दोनों जुगलों के द्वारा जो आदि रस मधुर रस, उसमें भी पारकीय भाव वो और नंदनंदन में यशोदानंदन में केवल नहीं होगा, ये तो राधा कांत गोपीनाथ रास रासेश्वर इनमें ही संभव है। इसलिए राधा जी जरूर वहां रहनी चाहिए। इसलिए राधा और कृष्ण के मिलन में जो रस होता है ये अन्य से, और वियोग में जो विप्रलंब रस होता है ये रस श्रीमद्भागवत में दिया गया है। निगम कल्प तरुर्गलित फलम सुख मुखाद अमृत द्रव संयुतम पीवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूजा। ये रस हे भावुक लोग, आप लोग समझ, ये राधा जी नहीं रहेंगी तो फिर कैसे। और शास्त्रों में सब लोग उनको ढूंढ रहे हैं कृष्ण को, और कृष्ण किसको ढूंढ रहे हैं, यह रास किसको लिए किया, गोपियों के लिए, राधा जी के लिए। और अंतर्ध्यान कहाँ गए हो करके, अंतर्ध्यान होकर कृष्ण अकेले अंतर्ध्यान नहीं हुई, राधा जी ने मान करके रास छोड़ दिया, छोड़ करके वो चली गई, गुमान कर लिया। कृष्ण ने देखा ये राधा जी तो है नहीं तो किसके लिए रास, इसलिए रास को छोड़ दिया, और छोड़ करके राधे 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 कहते हुए उनके पीछे चले, बंसी में उन्हीं का नाम खोजने लगे, राधा जी के पीछे चले। इस तरह से जन्मादस्य जतः आदि रस जो श्रृंगार रस है, उसमें भी पारकीय भाव का जो रस है वो राधा और कृष्ण जिनसे होता है, यहां तक कि राधा जी से ही ये सब रस निकलता है। क्यों, राधा जी महाभाव वाली है, रसराज महाभाव, महाभाव श्रीमती राधिका जी हैं। यदि राधा जी या गोपियां न रहें कृष्ण के पास में तो केवल वो ब्रह्म रह जाएंगे, उनके पास आने से ही राधा जी श्रीमती राधा जी के श्याम जी के पास में आने पर कृष्ण अखिल रसामृत सिंधु बन जाते हैं। इसलिए सचमुच में यदि कहा जाए तो महाभाव वाली जो श्रीमती राधिका जी हैं, मदन मोदनाख्य भाव वाली, इन्हीं से ही रस की उत्पत्ति होती है, कृष्ण उनके निकट में आ जाते हैं तब सब रस की निष्पत्ति होती है। इस विषय में केवल मात्र राधा और कृष्ण ही परस्पर के अभिज्ञ हैं, दूसरा कोई नहीं, और स्वराट हैं, स्वयं इस रस को उत्पन्न करने वाले हैं, उसके लिए दूसरा कोई हेतु नहीं। उसी को तेने ब्रह्म हृदा, जिन्होंने ब्रह्म अर्थात रस ब्रह्म को, यहां पर ब्रह्म माने ब्रह्मा नहीं, रस ब्रह्म, रस ब्रह्म क्या है, वही आदि रस श्रृंगार रस, इस रस को आद कवये अर्थात सुखदेव गोस्वामी प्रभृति नारद ऋषि इत्यादि हैं, उनके हृदय में तेने विस्तार किया, जो ब्रह्मा इन्होंने नारद जी ने दिया व्यास जी को, व्यास जी ने सुखदेव, विशेष करके सुखदेव गोस्वामी में उन्होंने स्फूर्ति की। जिस विषय में मोहयंत जत सूर्य, नारद प्रभृति भी मोहयमान हो जाते हैं, नारद जी रास में प्रवेश किया, कभी गोपियों से उनकी वार्तालाप हुई, शंकर जी कभी उस रसास्वादन करने के लिए वृंदावन में छल से गोपी का वेश बनाकर पहुंच भी गए तो उनके केस को पकड़ करके रासस्थली से बाहर कर दिया और गुलचे लगाकर के उनको पूरा रूप से दुरुस्त कर दिया, नहीं आने दिया। इसलिए ये सब लोग भी मुह्यमान हो जाते हैं जिस विषय में, और जिनके इस लीलाओं को देख करके समस्त प्राणी, चार प्राणी जितने हैं वो सब मोहित हो जाते हैं। कौन मोहित हो, नारद प्रभृति, और की तो बात क्या, सत्यम परमाधि में ही वो परम सप्तर स्वरूप नित्य धाम में विराजमान है, गोलोक वृंदावन में ब्रज में निरंतर क्रीड़ा करने वाले सत्यम परमा, ऐसे जो राधा और कृष्ण हैं, गायत्री के जो मूल वह हैं, प्रचोदयात हमारे हृदय में उदित हों, और काम गायत्री के जो मूल तत्व हैं मैं, या गोपाल मंत्र के जो मूल उद्देश्य वाले हैं गोपी जन वल्लभ, मैं उनका ध्यान करूं। कितने प्रकार के सुंदर से सुंदर अर्थों की अभिव्यक्तियां, यह है मंगलाचरण, यहां से आरंभ किया और सब बतलाया इन्होंने। कैसे बतलाया, इसके लिए उन्होंने ये प्रणाम किया सुखदेव गोस्वामी जी ने, या पीछे यहां पर सुत गोस्वामी का है, सुत गोस्वामी उवाच, इसमें बतलाते हैं, यहीं से आरंभ किया श्रीमद् भागवत का। यं प्रव्रजन्तम अनुपेतमपेत कृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजु पुत्रेति तन्मयतया कर्वोभिनेदु तं सर्वभूतरिदं मुनिमानतोस्मि। सुत गोस्वामी जी को जब ये प्रश्न किया उन्होंने और ये मंगलाचरण जब किया तो उनके हृदय में वो सारा रस और कृष्ण की वैसी प्रेममयी लीलाएं, रसमय लीलाएं उनके हृदय में प्रकट हो गई। वो अपने गुरु जी जो व्यास सुखदेव गोस्वामी हैं उनके चरणों में वो प्रणमत होकर के प्रणाम उन्होंने कर, उनके कृतज्ञ हो गए। ऐसी सुंदर सुंदर लीलाएं उनके हृदय में बाल्यकाल से लेकर के और अंत तक सभी लीलाएं उनके हृदय में आने लगी, प्रवाह आने लगा। उस समय में वो अत्यंत कृतज्ञ होकर के अपने गुरुदेव को प्रणाम कर रहे हैं। यं प्रव्रजन्तम अनुपेत अपेत अपेत कृत्यम, जो जन्म होते ही परिप्रज्ञा को निकले, अर्थात तो संन्यास धर्म, नंगे थे, कोई भी कृत्य नहीं हुआ, जात कर्म भी नहीं हुआ, उपनयन